स्व परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन। तो सबसे पहला सवाल है कि संस्कार किसको कहते हैं? हम कहते हैं आत्मा के तीन है, तीन शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। मन अर्थात संकल्प शक्ति, जो ख्याल उत्पन्न होता है ना, उसको हम कहेंगे मेरा मन भाग रहा है। फिर बुद्धि निर्णय करती है ये राइट है या रॉन्ग है। तो निर्णय करने के बाद फिर हम कर्म करते हैं। तो जो कर्म करते हैं उस कर्म का प्रभाव जो पड़ा मन के ऊपर वो संस्कार कहलाया जाता। अच्छा काम किया तो उस समय अच्छा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ा। अच्छा करते जाएंगे तो फिर मन के ऊपर अच्छा ही अच्छा ही आती रहेगी। मन हमारा अंदर का जो संस्कार है वो शुद्ध होता जाएगा। तो मन, बुद्धि और संस्कार, संस्कार का कनेक्शन कर्म के साथ है। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा संस्कार बनेगा। फिर जैसा जैसा संस्कार होगा वैसा वैसा आपका संकल्प उत्पन्न होगा, ख्याल चलेगा। फिर आप देखेंगे फिर चक्कर चलेगा पूरा साइकिल। फिर जैसा जैसा संकल्प वैसा वैसा कर्म, फिर कर्म से संस्कार, संस्कार से संकल्प, संकल्प से ये चक्कर है। तो अभी हम इस समय संगम युग में हैं और हम दो प्रकार के संस्कारों को समझ गए हैं। एक है आश्री संस्कार और एक है दैवी संस्कार। एक है योगी संस्कार, एक है भोगी संस्कार। तो द्वापर कलयुग में हम भोगी भी थे रोगी भी थे, मानो आश्री संस्कार वाली आत्माएं थी। हमारा योग ईश्वर से नहीं था, हमारा योग व्यक्ति और वैभवों के साथ था, इसलिए हम विकारी बन गए। और विकारों के वशीभूत जो हमने कर्म किया वो हमारा संस्कार बन गया। हम जो भी कर्म करते पहले पहले सूक्ष्म में चेक करो किस आधार से मैंने ये कर्म किया। सत्यता के आधार से कर्म किया या असत्यता को साथी बना के फिर ये कर्म किया। जो कर्म किया वो किसी न किसी विकार के वशीभूत होके कर्म किया या बाबा की याद में वो कर्म किया। कैसा कर्म किया? कर्म तो कर लेते हैं, अभी तुम देख रही हो तो देखना भी कर्म है, परंतु तुम्हारे नजर में भाव क्या है, आंखों में क्या भाव बैठा हुआ है। तो अब हमारा भाव तो बदली होता है ना। पहले हमारा भाव हम देहधारी अपने आप को समझते, फिर देह की दृष्टि से देखते, फिर रंग रूप को देखेंगे, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये मुसलमान लगता है मुसलमान, ये सिंधी है, ये हिंदी है। सारा दिन देह और देह के संबंधित बातों को ही सोचते थे, देखते थे, ऐसा ही अनुभव करते थे। दृष्टि दूर की, बिल्कुल हम दूरी के दृष्टि से देखते थे। रंग रूप को देखेंगे मोटी बुद्धि, जात पात को देखेंगे ये मोटाई थी। अनेक प्रकार के भेदभाव जो बने हुए हैं ना, जो मनुष्यों ने बनाया, उस भेदभाव के वशीभूत हम एक दो को देखते थे और एक दो के साथ व्यवहार करते थे। तो वो सब हमारा कैसे माना जाता है? ये आश्री संस्कार। देख दृष्टि से किया ना, वो हमारे आश्री संस्कार। उसके अंदर जरूर विकार है ही है। मोटा नहीं है तो महीन है, और नहीं तो देव मन तो है ही है ना। कोई भी कर्म करेंगे देव भान के वशीभूतों के काम करेंगे। एक मंदिर बनाते हैं, काम तो अच्छा करते हो पर मंदिर बनाने में भी देव मन आता है। भाई नाम लिख देना, फिर फोटो लगेगा तो कहेंगे इसके ऊपर हार भी पहनाया हुआ हो, क्योंकि मैं सेठ हूँ तो कम से कम मेरा भी तो मान हो इस मंदिर के अंदर। तो एक फोटो भी लगवाएंगे, धन देंगे तो उसका नाम भी लगना चाहिए। ये सब देव मन के वशीभूत काम करते हैं। चलो और मनुष्यों के बेटे में अच्छा है, मंदिर बना दिया, तीर्थ स्थान बना दिया, कोई अच्छा काम किया, प्याऊ बना, पर सब में देव मन उसका सपस दिखाई पड़ता है। भाई मेरा नाम, पानी का वो स्थान बनाएंगे तो भी कहेंगे मेरा नाम हो, और कोई मंदिर बनाएंगे तो भी कहेंगे मेरा नाम हो। आज बिरला मंदिर, जगह जगह बिरला मंदिर, पर बिरला मंदिर जो बना हुआ है तो बिरला का नाम देश विदेश में मशहूर हुआ, उसकी प्रारब्ध तो यहीं पूरी हो गई। धन दिया, नाम हो गया लाखों करोड़ों में, क्या सारे संसार में बिरला मंदिर बिरला मंदिर बिरला मंदिर। तो काम अच्छा किया दुनिया के भेंट में, परंतु देह मन के कारण किया कि मेरा नाम भी बाला हो। निस्वार्थ भाव से कोई काम करे वो तो कलयुग में असंभव लगता है। इसलिए जो अच्छे काम होते हैं वो भी कोई ना कोई विकार के वशीभूत होते हैं, उसको हम कहेंगे ये आश्री संस्कार है, वास्तव में देवभान के वशीभूत। देवभान का मीटर चालू ही रहता है, जैसे ना पेट्रोल में कार में पेट्रोल पड़ता रहता है तो आप देखेंगे मीटर चलता रहता है, पेट्रोल पड़ता रहता है मीटर चालू रहता है, एक से आके फिर और बढ़ेगा फिर और। ऐसे जब तक हम देह में है, देह के भान में है, तब तक हम जो कर्म करते हैं ना वो देवभान के वशीभूत जो कर्म हुआ वो हमारा विक्रम बना, वो आश्री संस्कार बन गए, और आश्री संस्कारों के वशीभूत जो संकल्प चलेगा ना वो भी हमारा ऐसा ही चलेगा। फिर हम आते हैं हमारे दैवी संस्कार, वो कौन से हैं? योगी संस्कार कौन से? योगी का योग ईश्वर के साथ होता है। योगी अपने को आत्मा समझता है, दूसरे को भी आत्मा दिखता है। मैं आत्मा, सामने वाले भी आत्मा। हम कर्म कर रहे हैं, एक दो को दृष्टि दे रहे हैं, तो दृष्टि देना कर्म है, मुख से बोलना कर्म है, पर भावना में क्या भरा हुआ है? मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये आत्मा बहुत संस्कारी है। तो संस्कार हम देखते रहते हैं, तो जो भी संस्कारों के वशीभूत हम काम करते हैं, अच्छे भी संस्कार उसके अंदर होते हैं, दैवी संस्कारों में भी कोई बहुत अच्छे संस्कार, और कोई किसी समय अच्छे और फिर कभी वो अभी अभी देवमन अभी अभी देवमनी अभी अभी योगी पक्के देवमन से परे की स्थिति में हम दृष्टि भी देंगे बोलचाल भी रखेंगे जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। फिर जब देह के अभिमान में आ जाते हैं तब फिर हमारी स्टेज नीचे उतर जाती है, तब देह भान के वशीभूत फिर जो हम कर्म करते हैं ना, देखना बोलना, अपने कर्तापन का भी अभिमान रहता है, मैंने ये अच्छा काम किया, मैं ज्ञान सुनाती हूँ, मैं योग सिखाती हूँ, मैं तो बहुत एक्यूरेट हूँ, मेरे को ये बातें अच्छी लगती हैं, मैं ऐसा ऐसा काम नहीं करती हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, ये सब जो भी है ना वो दैवी गुण है, मानो दैवी लाइन में तो हम आ गए, पर दैवी लाइन में जो नशा है वो फिर भी देह अभिमान का है। चाहे मैं अपने को टीचर समझू, बरोबर मैं हूँ टीचर, उसमें कोई शक नहीं है, पर इसके अभिमान रखने की जरूरत नहीं है ना। राजा का बेटा राजकुमार तो है ही, पर उनको साथ में नशा भी रहता है, वो उस ढंग से बात करता है, उस ढंग से दूसरों को दबाता है, अरे तुमको पता है मैं कौन हूँ, मैं फलाने राजा का बेटा, मैं तुमको एक सेकंड में सीधा कर सकता हूँ, मैं तुमको मरवा सकता हूँ। भाई तू राजा का बेटा वो तो ठीक है, वो तो यथार्थ है, पर उसका जो अभिमान रखा वो फिर आश्री संस्कार में आ जाता है। वैसे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये यथार्थ है नशा, पर ब्रह्मा कुमारी के बाद मैं अपने आप को फिर टीचर समझू, फिर मैं अपने आप को इंचार्ज समझू, मैं अपने आप को ज्ञानी समझू, मैं योग बहुत अच्छा कराती हूँ, तो इस प्रकार का जो संस्कार है ना उसको हम क्या कहेंगे? देवमान रूप थोड़ा चेंज है, ये थोड़ा रॉयल रूप है, वो आश्री रूप है, ये थोड़ा रॉयल रूप है, पर है ये भी माया। तो योगी जिसको सच्चा योगी कहेंगे, जैसे बाप समान, तो सच्चे योगी के हर कम में निष्कामता है। बाबा क्या बोलता है, बच्चे मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ये बाबा का दिल से शब्द निकलता था जिगरी, मैं शिव बाबा का भी सर्वेंट हूँ, उसने मुझे निमित्त बनाया है, और तुम माताओं के सेवा में निमित्त बने तो तुम माताएं तो मेरी मालिक हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करनी है, मुंह तो पली थी कपड़ को धोने की बाबा ने मुझे सेवा दी है। तो बाबा इतना जिगरी शब्द बोलता है, प्रैक्टिकल शब्द, जो बाबा बोलता है वो बाबा करता है। तो बाबा के मन में मैं सेवक हूँ, मुझे सेवा ही सेवा करनी है, पतित आत्माओं को पवन बनाने की सेवा मुझे मेरे बाप से मिली है, वो मुझे करनी है। तो बाबा उस ख्याल से कितनी अच्छी तरह से बाबा एक्ट करता है, सरेंडर हुआ तो बाबा के लिए कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा मैंने क्या सरेंडर किया, अरे दाता को कोई दे सकता है क्या? देखो बाबा की कितनी ऊंची ख्यालात, दाता जो देने वाला है उसको हम क्या दे सकते हैं? जो खुद ही ज्ञान का सूरज है उसको हमें फिर अपना दीपक जला करके क्या रोशनी दे सकते हैं? तो बाबा कहते हैं हम बाबा के बच्चे, बाबा ने हमारा तन मन सफल कर दिया, हमारी चमड़ी धमड़ी को सफल कर दिया। शिव बाबा आपका शुक्रिया है जो आपने मेरा सफल कर दिया। तो हर कदम में शुक्रिया। कोई काम अच्छा होगा कि बाबा कहेंगे बच्चे ये तो ड्रामा में बनी में बना पड़ा था, वो हो गया, मैंने क्या काम किया, मैंने कोई बड़ा काम किया क्या? बच्चे बलारी तो बाबा की है, वैल्यू तो उसकी है, उसकी तो कुछ भी वैल्यू नहीं। तो बाबा ब्रह्मा ने अपनी वैल्यू रखी नहीं, हर वक्त बाबा कहते हैं वैल्यू तो उसकी है, अगर वो ना होता तो मैं कहाँ होता, वो ज्ञान न देता तो मैं ज्ञान कहाँ बच्चों को देता, वो मुझे अपना नहीं बनाता तो मैं कैसे बच्चों की सेवा कर सकता। तो हर कदम में हर संकल्प में बाबा बाबा को याद करता रहा। दो बाप है ना हमारे, माना जाते हैं दैवी संस्कार अच्छे हैं, पर उसमें भी धीरे धीरे आप देखेंगे, समझो हमको ये रहेगा मैं स्टेट सेक्रेटरी, ज्ञान मेरे पास है, इसको क्यों दादी बनाती है, इसको क्यों आगे रखा है, मैं कोई पीछे हूँ क्या, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भाषण बहुत अच्छा करता हूँ, मैं कोर्स बहुत अच्छा कराता हूँ, दादी मेरे को क्यों नहीं आगे रखती है। आया ना देवमन, अज्ञान काल वाला जो देवमन था कि मैं नेता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं सेठ हूँ, चलो वो छोड़ के आए। अभी फिर यहाँ ये संस्कार निकला, रूप सिर्फ उसने विकार ने रूप थोड़ा रायल धारण कर लिया, दैवी जामा पहन लिया, वस्त्र पहन लिया, पर है ये भी देवमन। तो इस देवमन के वशीभूत जो कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार जो है वो आसुरी बन जाता है। चाहे हम बाबा के बच्चे भी बन गए, भगवान के गोदी में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे संस्कार ऐसे ऐसे होते हैं जो रूप बदले करके हमारे पास आते हैं। दान का नशा चढ़ता है, यज्ञ में पाई करेंगे, पैसा करेंगे, उनको ये लगेगा ये भवन मैंने बना के दिया, मैं ही तो हूँ यहाँ करने वाला, और कौन है बाबा का, मैं ही सिक्के लदा बचा, मैंने ये हाल बना के दिया, मैंने ये सब कुछ किया, मैंने ये चित्र लगाया, तो उनका अहम दिखाई पड़ता है। तो अहम जो है ना वो हमारा करा संस्कार है, ये आश्री संस्कारों में गिना जाएगा, चाहे हम ज्ञान में है चाहे हम अज्ञान में है। लोभ है, मोह है, तो बाबा ने पांच तो बड़े बड़े विकार बता दिए। देव माने सभी विकारों का बाप, संसार में जितने भी पाप बनते हैं ना वो देव मान से बनते हैं, तो देव माने सभी पापों का बाप, उस बाप से ये सारे पाप बनते हैं, और पापों के कारण दुख अशांति रोग शोक अब बीमारियां सब उनसे निकलती है। इसलिए वो जो आश्री संस्कार है उनको हम कैसे जीते, तो आपको फिर मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि आश्री संस्कार कौन से हैं? पांच तो बड़े बड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस। आलस भी एक विकार है, पांच बड़े और पांच अभी छोटे आते हैं। भय, भय क्यों होता है, क्या कारण होता है, सर्व कुछ न कुछ अंदर वीकनेस होती है इसलिए डर लगता है। अरे तुम सच्ची हो, सच्चा काम किया, तुमको डर काहे को, तो डर उनको लगता है। और फिर ईर्षा, ईर्षा में मनुष्य जलता ही रहता है, ईर्षा भी सबसे बड़ा दुश्मन है। दो देरानियों के बीच में जब ईर्षा होती है तो कभी भी वो सुखी हो नहीं सकती है। मैल उनको पति दे रहा है, मकान उसके लिए अच्छा बना है, उसकी कमाई है, उसकी मेहनत है, उसका पति कमाता है, तुम्हारा नहीं कमाता है, तेरा पति तेरे साथ, तेरी प्रारब्ध तेरे साथ, परंतु नहीं वो जलती रहेंगी। अपने देरानी का जो सुख है उसको अपने किस्मत से है, पर उनका सुख वो देख नहीं सकेंगे, उसमें अंदर ही अंदर जलती रहेगी, और अंदर ही अंदर जादू टोना करेंगे ताकि इनको नुकसान पहुंचे, ये मर जावे पर ये सुख न भोगे, क्योंकि मेरे को पास सुख नहीं है इसलिए। तो देखो ये कितनी गलत बात है मनुष्यों की, दूसरे का सुख हम देख नहीं सकते। अरे उनका सुख उनके कर्म उनके साथ ही है, उन्होंने अच्छे काम किए, इसलिए उनके प्रलब्ध अच्छी है, उनका पति अच्छा है, उनका स्वभाव अच्छा है, उनका हाथ अच्छा है, उनको पैसे जास्ती मिलते हैं, जरूर अच्छा मकान बनाएंगे। इसमें तुम क्यों अपने आप का अपना कंट्रास्ट करती हो? परंतु करते हैं, इसलिए जेवरों के ऊपर माताओं की जलसी, मकान के ऊपर जलसी, एक छोटी फ्रिज लगाएंगे उसके ऊपर जलसी, ऐसी छोटी छोटी बातों में आप देखेंगे सारा दिन बहुत सारी माताएं। खैर ये तो हमारी योगी माताएं हैं, ये मैं नहीं समझती जलती होंगी, लेकिन अज्ञान काल में जिन माताओं को देखा है उनको जलते हुए देखा, तो ईर्ष्या जो है ना वो जी को जलाती है। किसी को सुखी हम देख नहीं सकते, ये संस्कार करा है। फिर कोई कोई भाई बहन का ऐसा संस्कार होता है शक की निगाह, वो खुद का संस्कार लूज होगा ना तो दूसरों को उस निगाह से देखेंगे, ये इनसे क्यों मुस्कुरा रही है, जरूर कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि वो खुद लूज है, उनका बहुतों से कनेक्शन होता है, तो अंदर में वो संस्कार पक्का है। फिर दूसरे को देखेंगे ना, ये अच्छा भला बुजुर्ग भाई है, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, पर कोई बच्ची खड़ी होगी, किसने पूछा भाई क्या है, गीत गाते हो क्या हो कौन सा, वो कहेंगे ये इनसे क्यों खड़ा है, जरूर कुछ बात है, शक शक अनुमान। फिर एक छोटा सा विकार है जिद, जिद औरतों में बहुत जिद होता है, जिसको हम कहते हैं त्रिया हठ, बच्चों में बाल हठ होता है, तो जब बच्चा बाल हठ में आता है तो इतना क्रोध, इतना जिद, कुछ खुद खुदा भी उतर के आवे ना तो भी बच्चा न उतरे, गुरु उतर के आवे, उसका टीचर उतर के आके समझाए तो टीचर का भी नहीं मानेगा तो गुरु का भी नहीं मानेगा, माँ बाप की तो बात ही छोड़ दो। ऐसे स्त्री अगर किसी हठ पर आ जाए तो ऐसा कमाल का काम करके दिखाती है, पति के नाक में दम घुट देती है, पति बेचारा परेशान हो जाता, मैं क्या करूं, घर में सदा उल्टा मंजा डाल के सोई रहेंगे, और सिर का दर्द खड़ा है, और खाना उसको टाइम पर नहीं मिलता, उसको तंग करने के लिए कहेंगे मैं बीमार हूं, मैं क्या करूं, जाके नौकरियां रखो, जिसको चाहिए रखो, मैं नहीं कर सकती। अंदर हठ है, उसका हठ पूरा नहीं करता है, वो उसकी मांगनी है, उसकी कोई इच्छा है, वो मांगनी पूरी नहीं करता है, समझो उसको दुख होता है। ये है वास्तव में जो साधारण नारियां होती है उनके अंदर के ये संस्कार होते हैं। किसी भी किस्म का सुख वो देख नहीं सकेंगे, ज्ञान में भी आ जाएंगी ना तो वो बीमारी ज्ञान में भी आ जाती है। कैसे? मानो मैं हूं और मेरे साथ मेरी सखी है, दो इक्वल है, थोड़ा उनको आगे बढ़ता हुआ सभी देख करके ने मैं मां करती ये बहुत अच्छी है, अब हम दोनों खड़े हैं, दोनों साथी हैं, उसका बोलना अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, उनका व्यवहार सबके साथ अच्छा है, तो आप सब मेरे साथ खड़े होंगी ना, आप सब उठ करके उसके पास आएंगे, उसकी महिमा करेंगे, बहन जी आप तो बहुत अच्छी हो, बहन जी आपने तो बड़ा अच्छा भाषण किया, अब आपने उनकी महिमा की, अंदर अंदर मैं जलती रहूंगी, आपने मेरी गिलानी भी नहीं की, कोई कहे ना भाई इसने गिलानी की तब मेरे को फील हुआ, गिलानी भी नहीं करेंगे, सिर्फ आप मेरे साथ में मेरी सखी सखी उसकी महिमा कर रही हो, उनकी आप महिमा करेंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसका रंग लाल लाल होता जाएगा, मेरा रंग पीला पीला होता जाएगा, और धीरे धीरे मेरा शरीर ढकने लगेगा, फिर मेरे को उससे नफरत आएगी कि मैं इनके साथ तो कभी नहीं जाऊंगी, जहां जहां जाऊंगी ये अपनी बटाक दिखाती है, क्योंकि मेरे को अंदर में जलसी है, मैं उसका सहन नहीं कर सकती। यदि कोई किसी की महिमा करता है जो राइट बात है वो सामने आती है, उसमें तो मानना चाहिए ना, राइट को राइट समझो ना, तो आज वो संस्कार तो है नहीं, तो जलन, तो जिद का संस्कार और ईर्ष्या का संस्कार और घर लड़ाने का संस्कार। घर लड़ाती ना माताएं, कैसे लड़ाती है, हैं? पति तो बेचारा बिजी रहता है, पुरुष लोग बिजी होते हैं, धंधा दौरे से आएंगे तो सास जो होंगी वो बहू की बात अपने पति को सुनाएगी, उसके पति को सुनाएगी, मैंने अपने बेटे को सुनाएगी, तो बेटे को सुनाएगी, बेटे का दिमाग गर्म होगा, वो सुबह को उठते न सोचने विचार गुस्सा करेंगे औरत के ऊपर, वो कहेंगी क्या हुआ, रात्रि को आया हंसता बहलता आया, ये क्या हुआ रात रात में, तो रात रात में सुरंग लग गई, चिंगारी लग गई, उससे घर की लड़ाइयां लगती हैं, मालूम है सबको मालूम है। तो क्या होता है, पर चिंतन करते हैं, घर का भेद बताते हैं, किसी की बात को समा नहीं सकते हैं, तो उनके अवगुण जो चित्त पर चढ़ जाते हैं ना उसका वर्णन करते हैं। ये है छोटे छोटे आसरी संस्कार। आदत अलग है, कोई को चाय पीने की आदत नहीं थी, परंतु संग में आए चाहे पीने, भाई आदत अलग है। कोई उनका सुभा बड़े आवाज से बोलने का है, कहेंगा बहन जी मेरी आदत थोड़ी ऐसी है, मैं आज देने। कोई का सुभा थोड़ा अच्छा होता है, भाई आदत अच्छी होती है, बात करेगा धीरे धीरे ढंग से करेगा। परंतु संस्कार जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है, आश्रय संस्कार बहुत खतरनाक है। इसमें झूठ नहीं बोलेगा पर ढंग से बोलेगा, हेरा फेरी। कहेंगे मैं तो झूठ कभी बोलता ही नहीं हूँ। अरे तुम झूठ नहीं बोलते, हेरा फेरी वाली बात करते हो युक्ति से। इसे तो झूठ बोल रहा है, एक पक्का झूठ बोलो तो पकड़ में भी आ जाए। ये हेरा फेरी वाले पकड़ में भी नहीं आते, बात इधर भी घुमा लेंगे उधर भी घुमा लेंगे, ये भी कह देंगे वो भी कह देंगे। ये भी धोखे के संस्कार है। किसी को धोखा देना दुख देना ये भी संस्कार है। पर की निंदा करना चुगली लगाना ये भी संस्कार है। चलो ये तो संस्कार है, समझ में आ गया, सबको पता लगा ये संस्कार है। अब इसको हम जीते कैसे? जीतने की है मुख्य बात, जिसके ऊपर आज हम क्लास लेते हैं। देखो अज्ञान काल में हम इसको जीत नहीं सके, मालूम होता है, दब जाते थे फिर निकलते थे, फिर दब जाते थे फिर निकलते थे। किसी के प्रभाव में हम दबे रहेंगे लेकिन फिर थोड़ा ये इधर उधर गया तो मेरा वही संस्कार निकलेगा। अब बाबा ने ज्ञान दिया है, ज्ञान माना कौन सा शब्द बाबा हमेशा यूज करते, ज्ञान माना समझ। समझ कौन सी? अब यहाँ से हमारा परिवर्तन शुरू होता है। पहले मैं अपने आप को क्या समझती थी, जो मेरे देह का नाम है वो मेरा नाम है, ये समझते थे। देह के नाम को मैं अपना नाम समझ के बैठी थी। तो मेरे देह का जब जन्म हुआ तब वो नाम नहीं था, था कोई नाम मेरा? 6 दिन के बाद 8 दिन के बाद ब्राह्मण आया, उसने फिर नाम मेरा शरीर का रखा कि भाई इस वेला में जन्म हुआ, अच्छा इसका नाम फलाना। वो नाम मेरे माँ बाप ने मुझे पक्का कराया, बार बार बुलाते बुलाते अब पक्का हो गया मैं फलानी हूँ। अब उस नाम का मुझे भान आ गया कि मैं फलानी हूँ, और बार बार आईने में अपना ये रूप देखते रहते ना, तो मैं नारी हूँ, मैं कुमारी हूँ, मैं फलानी हूँ, फिर सुंदर हूँ, तो फिर सुंदरता का भी नशा आ गया। मैं बहुत सुंदर हूँ, नहीं मैं सुंदर है पर मैं वैसे बताती हूँ आपको, वो नशा चढ़ता है। और कोई की आंखें अच्छी होती है ना तो उसको अपनी आंखों का नशा, दांतों का नशा। मैं मुस्कुराती हूँ सबको बहुत अच्छा लगता है, वो दांतों का नशा। किसी के ये अच्छे होते उसका नशा, जरा ये होठ अच्छे होते उसका नशा। भाई ये तो इससे बॉडी के अंदर कितने अंग हैं, उन सब के नशे चढ़ जाते हैं। धनवान घर की लड़की होंगी तो धन का नशा और एक्स्ट्रा आ गया, पढ़ी लिखी लड़की होंगी तो पढ़ाई लिखाई का नशा आ गया, उनकी जात पात अच्छी होंगी फिर जात पात का नशा आ गया। तो नशे में नशा, नशे में अनेक कवर चढ़ जाते हैं। तो पहला ये मिथ्या है ना, देह मिथ्या नाशवान है। क्या बोले देंगे? बाबा ने समझ दी कि ये शरीर तुम्हारा जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ मट्टी का पुतला है। वो चेतन आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर की ब्यूटी आप देखते रहो, घंटे घंटे में देखते रहो, आपको पता लग जाएगा। सचपच ये पत्थर की मूर्ति अच्छी लगेंगी, एक रस लगेंगी, पर ये चेतन मूर्ति घंटे घंटे में रंग बदलती जाएंगी। क्या फर्क हुआ हमको? साबती मिली कि चेतन होने से सुंदरता थी। जब कोई आत्मा है शरीर में, साकार निराकार दोनों कंबाइंड है, तो उसका मुस्कुराना, उसका मीठा बोल बोलना, उसकी डांस करना, उसका गीत गाना, उसका कर्म करना, सब हमको अच्छा लगता है। और जब वो आत्मा निकल जाती है तो शरीर, फिर उसी शरीर से डर लगता है, फिर उसी शरीर को हम देखना भी नहीं चाहते, मुंह के ऊपर चादर डाल देते हैं, बस भाई फलाना चला गया, हाउस खाली हो गया। पर वो हाउस खाली अच्छा है, चलो एक किराएदार चला जाता है, दूसरे को तो बिठा सकते हैं ना, दूसरा तो उसको संभाल सकता है ना। ड्राइवर एक चला जाता है, दूसरा ड्राइवर उसी मोटर को चलाता है। पर ये वंडरफुल मोटर है कि इसमें एक ड्राइवर निकल जाए दूसरे को बिठा दे, भाई दो दो कार संभालो, ये भी संभालो वो भी संभालो, नहीं होता है। तो ये हमारे कर्मों से जो बना हुआ है, वो आत्मा अपने कर्मों से अपना चोला पहनती है, और जब इस शरीर से उनका हिसाब किताब पूरा होता है तो आत्मा चल बसती है, फिर वो सही कोई काम करनी, कुछ भी वैल्यू नहीं रहती। तो पहले भान था देह का, ये था उल्टा। अब बाबा ने समझ दी, अब स्व परिवर्तन कैसे आता है, पहले स्व को मैं देह समझती थी और देह के साथियों को मैं अपना साथी समझती थी, देह के घर को मैं अपना घर समझती थी, देह के देश को मैं अपना देश समझती थी, देह के जात पात को मैं अपनी जात पात समझती, मैं तो ब्राह्मण घर की हूँ, मैं क्षत्रिय घराने की हूँ, तो मैं अपने आप को क्या समझती थी, फलानी देवान। अब बाबा ने इसमें परिवर्तन बहुत मीठे ढंग से समझ दे दे करके हमको रियलाइज कराया कि तुम कला नहीं हो, ये कला तो तेरे शरीर का नाम है, शरीर तेरा विनाशी है, जड़ है, तुम चेतनात्मा हो और तुम्हारा मैं पिता हूँ, वो तुम्हारे देह का पिता है, दो पिता हो गया, ज्ञान में आए दो पिता, अज्ञान में थे तो तीन पिता थे वास्तव में, पर समझ फिर भी नहीं थी, थे पर समझ नहीं थी। अब बाबा ने समझ दे दी कि एक तुम्हारे देह का पिता है और एक तुम आत्माओं का पिता है, तो मैं तुम्हारी आत्माओं का पिता हूँ, तो अब हमारा ध्यान इस देह के पिता से निकल के आत्मा के पिता में गया, अपने निज स्वरूप में कि मैं निराकार हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान, मैं कहाँ की वासी हूँ, तो विनाशी कोई देश नहीं सामने, मैं परम धाम की वासी हूँ, मैं क्यों जगत में आई हूँ, मैं पाठ बजाने आई हूँ, ये मेरे पाठ के साथी ये सदा के साथी नहीं, मैं अभी किसी युग में खड़ी हूं तो क्या बोलेंगे, कौन सा संगम, हाँ ये न भूलो न बोलो पुरुषोत्तम संगम युग में हूँ, पुरुषोत्तम संगम युग याद आने से सब कर्म धर्म हमारे ऑटोमेटिकली पुरुषोत्तम हो जाते हैं, उत्तम पुरुष बन रहे हैं तो कर्म भी हमारे उत्तम होने चाहिए ना, तो बाबा ने ये जो समझ दी ना, अब इस समझ में पहले बेसमझ थे, अब समझ मिली तो पहले स्वयं में ही परिवर्तन आ गया, देह की बातें भूलते गए और बाप की बातों को याद करते रहे, अविनाशी घर को याद करते रहे, विनाशी घर से बुद्धि हटती, अरे क्या है विनाशी बातें ना, अच्छा हो गया सो हो गया ना, विनाशी शरीर का नुकसान हो गया सो हो गया भाई, फिर इसका क्या चिंतन करें, तो स्व का परिवर्तन बात बात में हो गया। कल किसी को कोई भाई लेके गया और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो अज्ञान काल में हम पता नहीं कितनी लड़ाई इस बात के ऊपर करती है, भाई जब उसका विचार नहीं था चलने का तो तुम क्यों आए, तुमने जोर क्यों दिया कि चलो चलो चलो, तो काल बन करके आए, तो मेरी बेटी को लेके गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो न आते थे तो अच्छा था, तुमने जोर दिया तब ये हुआ, ये सब है अज्ञान। अब बाबा ने जो समझ दी ना, तो बुद्धि को इतना ठिकाना मिल गया अंदर, जो हम कहते हैं भाई कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उसका ही कर्मों के अनुसार ये पाठ था, अब इसका पाठ पूरा हुआ, ड्रामा तुमने कोई जानबूझ के नहीं किया, पर ड्रामा उसका बनी में बना पड़ा था, जो बात बनी में बनी पड़ी फिर उसका चिंतन क्यों करें, चिंतन किस बात का करना चाहिए, जो अन्न होने वाली बात हुई हो, ये तो बनी में बनी पड़ी है, जो बनी में बनी पड़ी है वही बात हुई, तो अब मैं चिंतन किस बात का करूं, तो बाबा ने समझ दे दी, ऐसी समझ दे दी कि अब जो हम बीती बातों का चिंतन करते नहीं है, माता सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, क्योंकि 12:30 बजे निंद्रा देवी 12:01 के बीच में चक्कर लगाती है और ढूंढती है मेरे ग्राहक कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो जिसमें थोड़ा आलस होगा थोड़ी थकान होगी तो फिर निंद्रा देवी उसमें प्रवेश हो जाएगी, फिर वो अच्छी तरह से झूलेंगे, हम भी करते रहेंगे फिर जुड़े तो मेरे को हंसी आती है कि सचमुच जो है अंदर अंदर आत्मा तो कॉन्शियसनेस में है ना, नींद भी आ रही है वो भी कर्म धर्म हो रहा है, फिर हम भी कर रहे हैं, थोड़ा सुनते भी रहते हैं थोड़ा, तो मैं कहा एक बार हम रिफ्रेश करें, बहुत अच्छी बात सुनाने जा रही हूँ, दादी जानकी ने कल हमारे क्लास में कही, टीचर्स के क्लास में बहुत अच्छी बात है, तो दादी ने कहा गुलजार बहन और हमारी आपस में किसी बात पर चर्चा चली, तो गुलजार बहन ने कहा देखो जो बात हो जाती है सो बात हो गई, वो बात फिर 5000 वर्ष के बाद आती है, तो जो बात हो जाती है तो बात 5000 बस के लिए एकदम मर्ज हो जाती है, बात बाती हो जाती है, बस फिनिश हो गई तो हो गई, उसके बाद बात चिंतन नहीं चलता है, बात को बात फिनिश हो गई, परंतु बात को देखने वाले सुनने वाले वो चिंतन में आ जाती, ये बात क्यों हुई, ये बात क्यों हुई। तो उसने कहा बात अकुलमंद है, वो 5000 वर्ष के बाद आएंगी फिर, और बात को सोचने वाले देखने वाले वो चिंतन करते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। माने जो सीन हुई, वो जो सीन है उसके लिए क्या कहेंगे, सीन माना बात, कोई बात हुई, कोई सीन हुई, सीन फिर भी मर्ज हो जाती है, 5000 वर्ष से अपने उसको लपेट लेती है। तो मक्खन मिलेगा, मक्खन कहाँ से मिलेगा, माताएं अनुभवियों ने कहाँ से मक्खन मिलता है, दही से, तो दही को मिलना चाहिए न, पानी को तो नहीं, पानी से मिला है कभी किसी को, अच्छा गंदा पानी हो उसमें मधाई डालो तो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा गंदे पानी में ऐसे करने से, सीटे गंदे, मच्छर आएंगे, मच्छर खाएंगे हमको। तो पास्ट की बातों का चिंतन करना, वो मम्मा के शब्द बहुत अच्छे थे, जैसे मुर्दे को कब्र में दाखिल किया किसने और दूसरा उखेर करके फिर घर में ले आवे, ऐसा कोई करता नहीं है, मुर्दा ले गए शमशान भूमि में पहुंचा, उसको अंदर डाल दिया, फिर मुर्दे को उखाड़ करके फिर घर में कोई ले आएगा, कोई बेअकुल भी ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता आत्मा निकल गया, अभी मुर्दे को क्या करेंगे। तो हम पास्ट जो बात हो गई सो हो गई, वो फिर बात 5000 वर्ष के बाद आएंगी, उस बात को हम फिर क्यों सोचे, कल का दिन कौन सा था, कल विस्पता ने कल भोग खाया ना, कल खाया था ना अमृत पिया, भोग खाया और भी कुछ मीठा माल खाया तो जरूर होगा, जलेबी खाई, पता नहीं बूंदी खाई, खाई ना। तो देखो कल का दिन कल में ही समाप्त हो गया, वो दिन फिर कब आएगा, ये तो बात पक्की है ना। तो कल हमारी कुछ बात हो गई इसके और मेरे बीच में, और आज अगर उसी बात को, कल का दिन तो पूरा हुआ लेकिन कल वाली बात को लेके ये मेरी बात का चिंतन करती रहे, कल ऐसा हुआ, वो मेरे पास आई, फिर उसने ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा कहा, ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ, ज्ञान ये नहीं कहता, मैंने ये जो चिंतन करते उसको किस खाते में रखे, ये है व्यर्थ संकल्प। अब बाबा ने इसमें परिवर्तन कर दिया कि बच्चे व्यर्थ संकल्प कौन से है, समर्थ संकल्प कौन से, जो बात होने वाली है सोचो और करो, भाई कल क्या करना है, प्रोग्राम बना, फिर भी कहा जो ड्रामा में होगा, हम प्रोग्राम रोज बनाते हैं क्लास का, पर जब क्लास में आते हैं तो हमको मालूम है क्लास उधर से प्रोग्राम बना के आए, इधर दादी नहीं है बैठी ने बैठे बैठे कहा आज विदेशों का परिचय कराओ, आज तरह बच्चे हैं बच्चों का परिचय करा, एक्स्ट्रा प्रोग्राम आ गया, अच्छा आज भाई निर्वा भाई नीचे जा रहा है क्लास नहीं हो सकता है, आज करुणा भाई नहीं है उसका नहीं हो सकता, चेंज। तो बनाने के बाद फिर कहते चलो क्लास में चलेंगे, फिर जो ड्रामा में होगा, ऐसे घूमने का प्रोग्राम बनाते नहीं बन सकते, ड्रामा में नहीं था, बात खत्म हो गई, सेकंड में मर्ज। तो स्व परिवर्तन आए ना, स्व के ख्यालात में, संकल्प में, मन वचन में फर्क आ गया, तो हमारे कर्मों में भी फर्क आ गया, कर्मों में फर्क आ गया, हमारे संस्कार में फर्क आ गया। अभी हमारे वो पास्ट वाले संस्कार है, क्या खाते थे, क्या बोलते थे, क्या कर्म करते थे, क्या क्या देखते रहते थे, बड़ा अच्छा लगता था सिनेमा देखना। कल दादी जान की मेरे बाजू में बैठी थी तो मेरे को कहा कि मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि मेरी ऐसी नेचर हो गई है कि अज्ञान काल में मैं रुचि से ये देखती थी, यानी भागवत रामायण पढ़ती करती थी, रुचि थी ग्रंथ ये, और जब से मामा ने ज्ञान दिया तब से समझो मुझे एकदम स्पष्ट बुद्धि में बैठ गया सत्य क्या है और असत्य क्या है। सब कहानियां है, राम की कहानियां है, कृष्ण की कहानियां, कहानियां मन ही राम, मनोरंजन बहलाना। तो कहते इसलिए मेरे को याद ही नहीं आएगी कोई बात, कोई भी कहानी मुझे याद नहीं जो मैं दृष्टांत दे सकूं, क्योंकि मेरे बुद्धि ने ये निर्णय किया ये रॉन्ग है, ये हो गई समझ उसको, सो में परिवर्तन, परिवर्तन आया तो आज कहानी कोई भी याद नहीं। मैंने कहा मुझे फिर कोई कहानी याद आती है फौरन उसको मैं लौकिक को अलौकिक बना देती हूँ, फिर अलौकिक बना देती हूँ, माताओं को दृष्टांत मिलता है तो जरा दृष्टांत को सहज पकड़ लेती है, जो मेरा अनुभव है, तो मैं दृष्टांत देती हूँ, पर उसको लौकिक को अलौकिक बना करके उसे मेरे को अच्छा लगता है। तो कहा मैं अपनी बात बताती हूँ, तो मेरे में ये परिवर्तन आया। तो ये स्व परिवर्तन से हमारे सब संस्कारों में परिवर्तन आ जाता है। फिर ये जिद का संस्कार, अच्छा ईर्ष्या का संस्कार है। मान लीजिए मेरे में ईर्ष्या का संस्कार था बचपन में, तो सभी में सभी विकार थे, समझो था। अब मुझे समझ मिली, मैं कहती हूँ कितनी वंडरफुल बात है, माताएं ध्यान से सुनना ये बातें। अभी नींद नहीं करना करो, किसको आती है नींद, हाथ उठाए, थोड़ा थोड़ा हाथ उठाओ, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। हाँ देखो एक को आ रही है, बेचारे ने सच बोला, और किसको आ रही है, भाई को भी आ रही है, मैं देख रही हूँ, सच सच बोलो, देखो दूसरा। अच्छा अभी फिर से ध्यान से सुनना, अभी समझो मेरे को ईर्ष्या आ रही है कि ये जो बहनें हैं इनको सभी प्यार करते हैं और इनका नाम सबको अच्छा लगता है, ये सभी कहते हैं यही बहन योग कराए, यही बहन ज्ञान देवे और यही बहन फलान जगह चले, क्यों मेरे को क्यों नहीं कहते हैं, मैं कम हूँ क्या? तो मैं इनके साथ अपना मुकाबला अंदर अंदर करती हूँ, कॉन्ट्रास्ट करती हूँ। कॉन्ट्रास्ट दुख देने वाला होता है, कॉन्ट्रास्ट वास्तव में करना ही नहीं चाहिए। क्यों? कि न इसका नाम न मेरा नाम एक जैसा है, नाम ही नहीं है। इसका नाम भाई क्या है तुम्हारा, सुमा? देखो इसका नाम अलग, मेरा नाम अलग। फिर इसका जो रूप है वो मेरा रूप है नहीं। फिर इनके जो गुण कर्तव्य है वो मेरा है, मेरा पार्ट अलग, इसका पार्ट अलग, इनका सब कुछ अलग है। सेकंड सेकंड की एक्टिविटी अलग अलग है। अभी मैं कॉन्ट्रास्ट करूं तो कॉन्ट्रास्ट में पहले ये बेचारा मेरे को मिलेगा ऐसे जैसा, कितना भी मैं साबुन लगाऊं, लिपस्टिक लगाऊं, हाँ, पर ऐसे जैसा चेहरा मेरा बनेगा? जब इसकी सूरत नहीं बन सकती तो सीरत कैसे बनेंगे? फिर इसकी जो प्रारब्ध है वो इनके किए हुए कर्मों के आधार से गुप्त इनके पास है, मैं इनकी प्रारब्ध को कैसे छीन सकती हूँ? इसने किया हुआ सो भोग रही है, मैं किया हुआ अपना भोग रही हूँ, मैं इसे किस बात की करूं, कौन सी बात मेरे साथ में चलेंगे? हर एक का पार्ट अलग, हर एक का भाग्य अलग, हमको किसी से भी किसी के पार्ट की रिस नहीं करनी है। एक छोटा सा दृष्टांत दूंगी, टाइम भी हो रहा है, कि बहुत अच्छा दृष्टांत है पर समझने वाला समझे तो बहुत उससे फायदा है। कहती है लक्ष्मी और सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती दोनों बहनें थी, दृष्टांत दोनों बहनें थी, देवियां तो लड़ती नहीं है पर मनुष्य है ना लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने देवियों के दृष्टांत भी लड़ने में लगा दी है। तो कहने लगा कि पार्वती को एक दिन ख्याल आया, बैठे बैठे और जाकर के शंकर को कहा कि महाराज मुझे आज्ञा चाहिए आपकी, मैं आज अपनी बहन लक्ष्मी के पास जाना चाहती हूँ। तो शंकर तो कहते ना भगवान है, तो वो मुस्कुराता रहा, कहा प्यारी तुमको कोई निमंत्रण थोड़ी बहन ने दिया है जो तुम जाती हो। कहा स्वामी जी निमंत्रण की क्या जरूरत है, बहन में है, बहन के पास जाती हूँ, उसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है, थोड़ी मन्नत की, भगवान ने इशारा दिया कि तुम क्यों जाती हो, निमंत्रण तुमको है नहीं। पर उसने कहा इसमें क्या है, अच्छा नहीं है, तुम जाने चाहते हो भले जाओ, अच्छे आदमी होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं अच्छा भले जाओ, जानते हैं क्या रिजल्ट होंगी। गई बेचारी पार्वती, गई अब पार्वती गई तो उसके पाठ और उस लक्ष्मी के पाठ में तो बहुत फर्क है, नाम और रूप में भी फर्क है। वो धन की देवी धन नहीं है, धरा धर बहता रहता था, सोना चांदी हीरा मोती बहुत बड़े सुंदर मेले में सजी दजी बैठी थी। तो जब लक्ष्मी ने देखा उसको, पार्वती को, तो ऐसे करके देखने लगी और थोड़ा नशे से बोलने लगी। लक्ष्मी बोलती तो नहीं है कभी सत्योग में, बोलेंगे क्या हम, पर मनुष्यों ने कहानी बनाई है। तो ऐसे करके उसको ऐसे टोंटिंग भाषा में बोला कि तुम आज कैसे पर्वत को छोड़ करके और तपस्या को छोड़ के तुम कैसे आज महल में, मेरे महल में आ गई। बस उस एक शब्द से उसको अंदर में कुछ पैदा हो गया कि क्या मेरी इतना इसको अभिमान है अपने पैसे का, इतना इसको अपने लक्ष्मी को अपने धन का मैल का अभिमान है, मेरी इंसल्ट की इसने। तो उसको एकदम ऐसा चढ़ा नशा कि फौरन गई शंकर के पास कि स्वामी जी एक बात है, आप कैसे भी करके मेरी आस पूरी करो, वचन दो वचन दो, जोर लगाया उसके ऊपर जिद का संस्कार, हट। तो वो समझ गया इसको कौन सी बीमारी वहां से शुरू हुई होंगी। तो बीमारी कौन सी कि अंदर उसको ईर्ष्या आ गई, क्योंकि उसने थोड़ा अपमान से कहा। तो उसने कहा कि स्वामी जी बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक आशा है जल्दी से जल्दी मुझे लक्ष्मी से भी बढ़ करके सुंदर महल बना करके दो। तो कहा प्यारी तुम तपस्या करने वाली, तू कहाँ महल में बैठेंगी, तेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है तपस्या? शंकर पार्वती की तपस्या दिखाते ऊपर बैठी है पर्वत पर। कहा सो क्या, मेरी एक ही तो आशा है, आप मेरी पूरी करो। उसने कहा ठीक है। तथास्तु, विश्वकर्मा को ऑर्डर गया, उसने फटाफट जादूगरी के तरह से बना करके दे दिया। अब उसके मन में आए तो इसका उद्घाटन तो किसी बड़े आदमी से करो। बड़े थे बड़ा कौन? रावण। ये देखो उस जमाने में रावण के हाथ में बड़ी पावर। रावण से उद्घाटन कराया। जब उद्घाटन कराया तो नारद फिर लाई लगाई वाला, तो लक्ष्मी को पता लगा कि बहुत सुंदर महल बनाए हैं, इसलिए लक्ष्मी को भी निमंत्रण दिया कि भाई तुम जरूर आना। लक्ष्मी ने नारद को पट्टी पढ़ा दी कि जब रावण इससे भिक्षा मांगे ना तो रावण को बता देना और कुछ नहीं मांगना, हीरा मोती कुछ नहीं कहना, बस यही महल मेरे को दे दो। देखो कौन सी बात कहाँ पहुंची। तो कहते हैं लक्ष्मी को भी ईर्ष्या पैदा हुई कि अगर मेरे से ये बढ़ करके निकली तो ये मेरे को भी आंख दिखाएंगे, इसलिए इसका महल ही लिया जाए तो काम ही खत्म हो जाए। उसने नारद को पट्टी पराई, नारद ने रावण को पट्टी पराई, रावण ने इसके सामने जब उद्घाटन हुआ विधि पूर्वक धाम धूम से, तो उसने कहा अब तुम जो मांगो सो मैं तुमको दूंगी, तुमने बहुत विधि पूर्वक मंत्रों का जाप जप जप करके बड़े अच्छे ढंग से महल का उद्घाटन किया, अब तुम आए को जो चाहिए मुंह मांगा मैं इनाम दूंगी। उसने कहा न मुझे हीरा चाहिए, न मोती चाहिए, न मानक चाहिए, न वो हाथी घोड़े चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं कुछ बोलो, कुछ बोलो। ऐसे जोर दिया तो उसने कहा और कुछ नहीं, सिर्फ ये महल दे दो। बस उसकी धरती निकल गई और जुबान वो दे चुकी थी कि भाई जो मांगेंगे सो तुमको दूंगी। अगले जमाने में जुबान पर मनुष्य पक्के रहते थे। अंदर बहुत गुस्सा आया कि ये रावण ने क्या मांगा, बनाया अपने लिए। हाँ। तो फिर शंकर के पास गई, बात लंबी है मैं सार रूप में बताती हूँ। तो शंकर के पास गई तो कहा स्वामी जी देखो ना रावण ने क्या कर दिया, सारा मेरा महल ही ले लिया। तो उसने मुस्कुरा करके कहा प्यारी तुम्हारे नसीब में भी हो ना महल क्योंकि तुम तो तपस्या करने वाली, तू कहाँ महल में बैठेगी। अब उसने की रीस, दूसरा पति का कहना नहीं माना, तब उनकी इंसल्ट हुई, इंसल्ट सह नहीं कर सकी, तब कहा ऐसा महल चाहिए। तो ये आजकल के समय में ये बीमारी बहुत कड़ी बीमारी और फैली हुई है। पुरुषों में भी होती है, एक दुकान दूसरा दुकान तीसरा दुकान, कई पुरुष भी ऐसे उसमें जलते रहते हैं, नुकसान एक तो को पहुंचाते रहते हैं, जादू टूना करते रहते हैं, इसका दुकान डाउन जाए या ये बीमार पड़ जाए, ये मेरे से आगे ना निकले। लड़के लड़के एक स्कूल में पढ़ने वाले वो भी ऐसे करते हैं, जो फर्स्ट नंबर आता है तो सेकंड नंबर वाला उसके ऊपर ईर्ष्या करता है। पर ईर्ष्या करने वाले जिसने भी ईर्ष्या की वो उसके प्रारब्ध से पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि प्रारब्ध हर एक की गुप्त है। ये पिछले कर्मों की कमाई हमारे साथ है, तुम कितनी भी रिस करेंगे पर जो मेरी प्रारब्ध मेरे साथ है उसको तुम छीन नहीं सकते हो। अब ये बात माताओं के ध्यान में आ जाए तो कभी हम किसी के झोपड़ी महल को देख करके अपनी झोपड़ी को नहीं खराब करेंगे। हम कहेंगे हमारी झोपड़ी भी बहुत अच्छी है, वो अपने झोपड़ी में सुखी रहेंगे, दाल रोटी में खुश रहेंगे, रुकी सुखी बात में खुश है, पर अपने में खुश, मेरी प्रारब्ध के अनुसार मुझे जो मिला है वो बहुत अच्छा है। तो ये संस्कार परिवर्तन तब होता है जब ज्ञान और योग होता है, हद से बुद्धि निकल जाती है। हम लोगों की हमारी बड़ी बड़ी दादियां बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने, बड़े बड़े घरों के करोड़पति की मिल्कियत, करोड़पति घर की मिल्कियत को ऐसे छोड़ कर किया जैसे कोई राजा रानी छोड़ के महल को। तो लोगों ने वंडर खाया, 14 साल वो देखते रहे कि इनको बच्चे याद नहीं आती हैं, इनको महल याद नहीं आता है, इनके पीछे कौन सी ताकत है। तो कोई तो कहते ये पागल हो गई, पर जब पागल के पास आवे तो देखे शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, ये कैसे पागल है, यह उनको पता नहीं लगा ये भगवान के नाम पर पागल हो गई है। पागल टाइटल ठीक ठीक, ये तो पागल है, ये तो पागल ही हो गई। हाँ भाई हो गए हैं पागल, पर ये भगवान के रास्ते में पागल हो गए हैं तो माया के पीछे पागल हो गए हो। तो परिवर्तन आते हैं तो इन सब सुखों को एक सेकंड में छोड़ देते हैं, ईर्ष्या द्वेष सब खत्म हो जाता है, फिर मनुष्य का मन अच्छे रास्ते में। फिर ये जो छोटे छोटे विकार है, जिद आगे हमारे में जिद था, अब जिद को हमने दृढ़ता में ट्रांसफर कर दिया, वही दृढ़ता अच्छे काम में। जिद मन दृढ़ संकल्प, मुझे ये करना ही है, वो उसको ट्रांसफर कर दो अपने ईश्वरी मत पर। मुझे श्री मत पर चल रहा है, दुनिया एक तरफ हो जाए मैं भगवान को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं इस विकारों को टच नहीं कर सकती हूँ, मैं कोई विकारी मनुष्य के मत पर नहीं चल सकती हूँ। तो जिद को ट्रांसफर कर दिया, कोई किस्म का हट नहीं करते, करते हैं तो भगवान के कार्य में हट करते, ये काम करना ये नहीं करना है। बातें करते हैं, निंदा चुगली नहीं करते, ज्ञान की वर्षा करती है, ज्ञान सुनो सुनाओ ये भी तो धंधा है ना। पहले वो धंधा करते थे पर चिंतन का, स्वचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो और कराओ। तो सारे संस्कारों को ट्रांसफर कर दिया। लोभ है हमारे में प्रज्ञात रत्नों का है, मोह है पर देहधारी में नहीं है, शिव बाबा में है। तो मोह गया ना हमारा, किसी में तो लगा ना। प्यार है पर देहधारियों के साथ प्यार था, वैभवों के साथ, अभी बाबा बाबा की बातों के साथ हमारा प्यार है। तो सब संस्कार परिवर्तन में आ गए, लोभ मोह अहंकार। बाबा कहते शुद्ध नशा चराओ, मैं किसकी संतान हूँ, कौन हूँ और किसकी संतान, ऊंचे से ऊंचा नशा चराओ जिसे ऊपर वाला कोई नशा नहीं। लोभ रखो, मोह रखो, अहंकार है, अहंकार भी सबसे बड़े से बड़ा। तो बाबा ने सारे विकारों को ही ट्रांसफर कर दिया, स्व परिवर्तन से, समझ के आधार से, ज्ञान के आधार से और योग की शक्ति से संस्कार परिवर्तन सहज ही सहज। कुछ हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ राइट है या रॉन्ग है, जो रॉन्ग है उसको छोड़ दो, जो राइट है वो करते जाओ। ओम शांति।